Please.
आज हम मकर संक्रांति का जो पवित्र दिन है जिस दिन वैष्णव कैलेंडर के अनुसार ये वो दिन है जब भीष्म पितामह ने भी अपने देह त्याग किया था और भगवत धाम वापस पधारे। भगवत गीता में भगवान कहते हैं अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। अंतकाले शरीर छोड़ते वक्त माम एव स्मरण मेरा स्मरण करते हुए मुक्त्वा कलेवरम जो शरीर छोड़ता है यह प्रयाति इस तरह से अपना प्रयाण शुरू करता है समद्भावम याति वो मेरे भाव को प्राप्त होता है मेरे धाम को प्राप्त होता है न अस्ति अत्र संशय इसमें कोई संशय नहीं है हे अर्जुन लेश मात्र भी संशय मत करो कि अगर कोई मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है तो निश्चित मेरे धाम को प्राप्त होता है भगवत धाम को। तो ये जीवन की सफलता है कि अगर हम मृत्यु के समय भगवान नाम का स्मरण कर सके। भीष्म पितामह इसके एक आदर्श उदाहरण थे। किस प्रकार उन्होंने बाणों की शैया पर कई दिनों तक लेटे रहे जब तक आज ही के दिन 5000 साल तकरीबन पहले जब सूर्य उत्तरायण की ओर जाता है दक्षिणायन से और ठीक उस समय योग पद्धति के अनुसार शरीर छोड़ना बहुत ही अनुकूल माना जाता है और न केवल वो समय काल अनुकूल था बल्कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण प्रेम से आदान प्रदान करने के लिए वहां सामने बैठे हुए थे। पांडव भगवान के शुद्ध भक्त सामने बैठे हुए थे और जिस प्रकार एक भौंरा कमल के फूल की ओर मंडराता है इस तरह भीष्म पितामह के दो आंखें भगवान के जो मुख कमल है उसमें पूर्ण रूप से मग्न थी और स्मरण करते हुए भीष्म पितामह ने शरीर त्याग दिया आज ही के दिन। तो ये 5000 साल पहले तकरीबन ये घटना घटी। ये स्वाभाविक हम जैसे बद्ध जीवों के लिए बहुत ही नामुमकिन लगता है कि हम लोगों के लिए कहां हम बद्ध जीव। 500 साल पहले तकरीबन ऐसा ही दूसरी घटना हुई जब श्री चैतन्य महाप्रभु के समक्ष जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है हरिदास ठाकुर ने अपना शरीर त्यागा और वो भी चारों ओर भक्तों से घिरे हुए थे सबके चरण कमल का धूल अपने सर पर लिया हरिनाम चल रहा था श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को अपने हृदय पे रखा और श्री चैतन्य महाप्रभु के मुखारविंद को निहारते हुए पूरा एक तक देखते हुए दर्शन करते हुए श्री कृष्ण चैतन्य ये नाम उच्चारण करते हुए अपना शरीर त्यागे। तो चैतन्य महाप्रभु ने यह दिखाया कि किस प्रकार ये आज की दुनिया में भी मुमकिन है। पर फिर हम कहेंगे नहीं नहीं वो तो हरिदास ठाकुर थे जो दिन में 3 लाख नाम लेते थे हम लोग 16 माला बड़ी कठिनाई से कर पाते हैं। तो हम जैसे बौद्ध जीवों के लिए एक ऐसा आदर्श शरीर छोड़ना बहुत मुश्किल है। कुछ महीनों पहले एक कॉलेज में हमने एक लेक्चर अरेंज किया था जिसका शीर्षक था द आर्ट ऑफ लिविंग, कैसा जीना है, जीने की कला, द आर्ट ऑफ लिविंग। तो लोगों को बहुत अच्छा लगा भगवद गीता का आधार पर कैसा जीना है, संसार में होते हुए संसार के नहीं होता, पद्म पत्र मीमांसा प्रवचन दिया, सबको अच्छा लगा। उसके अगले महीना और एक प्रवचन का इंतजाम किए थे और वो बोले कि आप इस बार क्या बोलोगे, तो हमने कहा द आर्ट ऑफ डाइंग, मरने की कला। तो सब वो डर गए, बोले नहीं ये तो कॉलेज स्टूडेंट के लिए, आप अभी इसको लंबा जीना है, आप आर्ट ऑफ डाइंग सीधा क्यों कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि द आर्ट, द सक्सेस ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग इज द आर्ट ऑफ डाइंग। अगर आपने जीवन यशस्वी पूर्ण जिया है, इसका परीक्षा कब होता है, जब मृत्यु के समय। लाइफ इज ए प्रिपरेशन, डेथ इज द एग्जामिनेशन। पूरी जीवन एक तैयारी है और इसका जो परीक्षा कब होता है, मृत्यु के समय। यम्यम वापि स्मरण भावम चजत्यन्ते कलेवरम तंतमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। यम्यम वापि स्मरण भावम, पूरे जिंदगी भर आप जिस चीज को प्रमुख प्रामुख्यता दिया है अपने जीवन में, जिस चीज का सबसे ज्यादा स्मरण किया है आपने, जिस चीज के लिए आपने ज्यादा समय दिया है, जिस चीज के लिए आपने ज्यादा ताकत लगाया है, जिस चीज को अपना पूर्ण चेतना उसमें लगाया है, स्वाभाविक है कि वही चीज मृत्यु के समय आपको सबसे पहले याद आएगा। यम यम वापि स्मरण भाव, जिस चीज पे हमने सबसे ज्यादा ध्यान दिया है, भले वो परिवार के सदस्य हो, भले वो आपका पैसा हो, भले आपके संबंधी हो, भले आपका यश हो कि पदवी हो या भगवान हो। भरत महाराज ने अपने जीवन के अंत में एक हिरण के ऊपर ध्यान कर दिया, पूरा ताकत लगा दिया उसको देखभाल करने के लिए, आसक्ति हो गई, जिसके बारे में सोचेंगे ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। जिसके ऊपर आप पूरे जीवन भर ध्यान देंगे वही चीज के प्रति आसक्ति होगी, और जिस चीज की आसक्ति होगी वो हमेशा हमारे मन में सबसे प्रामुख्य स्थान को प्राप्त करेगा, और मृत्यु के समय सबसे पहले वही आएगा। उदाहरण के लिए अगर मैं आपको बोलूं कि भगवान ऐसा ना करे कि प्रभु जी आपके घर में आग लगा हुआ है, कोई आके वही भक्त आपको फोन करे बोले अभी आग लगा हुआ है, सबसे पहले आपको क्या याद आएगा, जो उस घर में सबसे प्रिय चीज आपकी है वो सबसे पहले याद आएगी। अरे मेरी पत्नी, अरे मेरा बच्चा, अरे मेरा तिजोरी, मेरा धन, जो भी, मेरा गाड़ी, जो भी सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो सबसे पहले याद आएगा। इसी तरह से मृत्यु के समय भी जो सबसे प्रिय पूरे जीवन भर रहा है वही हमको स्वाभाविक रूप से वो याद आएगा। बहुत चीजें याद आएगी पर ये याद जो है वो अटक जाएगा हमारा, और उसका स्मरण करते हुए अगर शरीर छोड़ेंगे, तंत में वही तिकौंते सदा तद्भाव भाविता। तो जहां खत्म करोगे आप जीवन, अगले जन्म में वहीं से शुरुआत होगी। कैसेट में कभी कभी पॉज बटन दबा देते, रात को सोते वक्त आपने पॉज दबाया, फिर सुबह खोला तो जहां बंद किया था वहां से शुरू होगा। तो ये हमारा जीवन है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, कैसेट घूम रहा है ये 84 लाख योनियों में, और मृत्यु मतलब 7 महीने के लिए पॉज बटन दबाया, और 7 महीने के बाद फिर से वही कैसेट जहां छोड़ा था वहीं से शुरू होगा। तो इसलिए जब हम आदर्श जीवन और आदर्श मृत्यु देखते हैं भीष्म पितामह का, हरिदास ठाकुर का, तो कभी कभी हम लोग सोचते हैं ये हम जैसे बद्ध जीवों के लिए, हम जैसे तुच्छ जीवों के लिए प्रायशः नामुमकिन है, पर ऐसे लोगों को सुखदेव गोस्वामी प्रोत्साहित करते हुए अजामिल की कथा 6 स्कंद में सुनाते हैं, परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं जो मृत्यु के मुंह में है ऑलरेडी झांक रहे हैं, वो 7 दिन में उनका गारंटी हो गया है कि 7 दिन के अंदर शरीर छोड़ने वाले वो, और छठे स्कंद मतलब 4-5 दिन तो हो ही गया है, 3-4 दिन बाकी है। और तब उनको आश्वासन देते हुए कहते हैं, म्रियमाणो हरिर नाम गृणन पुत्रोपचारितम अजामिलोपि अगाधाम किम पुनः श्रद्धया गृणन किमुत। ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, किमुत, इसको कहते हैं किमुत न्याय। किमुत न्याय का मतलब है, अरे ऐसे ऐसे बद्ध जीवों का हो गया तो इसका क्या कहना। कोई कहेगा कि अगर ऐसे ऐसे गरीब लोगों को भी उनको पास मिल जाता है तो फिर धीरू भाई अंबाई का क्या कहना, किमुत फिर इसका क्या कहना। इस तरह से किम होता मतलब अगर ऐसे ऐसे लोग भी चले गए तो फिर तुम लोगों का क्या कहना, ये किमु तो न्याय। तो 4 चीज बता रहे, म्रियमाण हरिर नाम गृणन पुत्रोपचारितम अजामिलोपि अगा धाम किम पुनर्श्रद्धया गृणन किमुत श्रद्धया गृणन। तो अजामिलोपि, अजामिल कैसा था, पूरा जीवन भर उसने पाप ही किया, और ऐसे पाप किया जो हम शायद उस हद तक आज तक कलयुग के बद्ध जीव भी उतने नहीं किए, ऐसा पाप किया उसने अजामिलोपि। इसीलिए कहते हैं अगर अजामिल अगाध धाम, अरे भगवत धाम चला गया वो उसी जीवन में, अजामिलोपि अगर अजामिल जा सकता है, अजामिल जैसे पापी व्यक्ति जा सकता है, अजामिलो म्रियमाण, और दूसरा क्या, म्रियमाण मरते वक्त उसने लिया, जिंदगी भर नहीं लिया, जिंदगी भर ऐसे ही बस नारायण एक गिलास पानी ले आना, नारायण खाना ले आना, नारायण प्लेट धोना, बीच बीच में कभी बोलता हो तो नारायण नाम अच्छा अच्छा है, उल्टा सीधा चिंटू पिंटू रखने के बदले नारायण नाम रखो तो कम से कम अच्छा है, भगवान का नाम रखो, हे विठल हे विठल करेगा तो कम से कम विठल का याद आएगा। सॉरी, तो एक अजामिलो, दूसरा म्रियमाणो, सिर्फ मरते वक्त उसने नारायण का नाम लिया, और नारायण की मूर्ति को नारायण भगवान नारायण के स्मरण करते हुए नहीं, पुत्र उपचारितम, 3 चीज यहां बताया जा रहा है, अजामिलोपि म्रियमाणो पुत्रोपचारित। अगर अजामिल जैसे व्यक्ति सिर्फ मरते समय वो भी अपने पुत्र को उच्चारण करते, पुत्र का नाम, पुत्र को देखते हुए अगर नाम लेते हुए अगाध धाम, अगर धाम जा सकता है, किमुत श्रद्धया गृणन, तो फिर ऐसे लोगों का क्या कहना जो आजीवन पूरे जीवन भर बड़े प्रामाणिकता से, बड़े श्रद्धा पूर्वक, बड़ी तीव्रता से, बड़े ध्यान पूर्वक कोशिश कर रहे हैं कि हरि का नाम भगवान का नाम ध्यान पूर्वक ले। कितना आशा मिलता है भागवत अध्ययन करने से, खास करके छठा स्कंद, क्योंकि छठा स्कंद में पोषण कैसे भगवान अपना संरक्षण करते हैं हमारी, इसका वर्णन है। छठा स्कंद बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या करना है क्या नहीं करना है, बहुत आशा मिलता है हमको। तो पर एक सवाल उठता है कि लोगों को इतना ही मालूम है, अजामिल कैसा गया भगवत धाम, उसमें ऐसी क्या योग्यता थी, लोगों को ऐसा लगता है कि मरते वक्त अजामिल ने नारायण का नाम लिया और यमदूत चले गए और विष्णु दूत उसको लेके भगवत धाम चले गए, नहीं ऐसा नहीं हुआ। जब अजामिल मर रहा था यमदूत आए, यमदूत आकर अपने यम पाश लगाया और उसे खींच के ले जा रहे थे, जैसे खींच के ले जा रहे थे उस समय नारायण का उच्चारण किया और नारायण, ये चार नाम होने के कारण चार विश्वदूत आ गए। तीन ही यमदूत थे, क्यों? कर्मणा मनसा वाचा, वाणी से जो जो पाप किए, मन से जो जो पाप किए, कर्म से जो जो पाप किए, शरीर से जो जो पाप किए, तीनों का अकाउंट लेने के लिए तीन लोग आए। मरते वक्त उसने ये चार नाम का उच्चारण किया, नारायण, तो चार यमदूत। एक्चुअली विष्णु दूत भी इधर उधर भ्रमण करते रहते, जाते रहते, फायर ब्रिगेड जैसा देखते रहते, कहीं कोई सिग्नल आ गया तो सब आ जाते तुरंत, कोई है क्या ऐसा हमारे भगत, कोई है क्या हमारे प्रभु का भगत, कोई है इधर। तो नारायण बोला तो तुरंत आ गए विष्णु लोग, कहां उनको वहां आने की कोई तकलीफ नहीं। आध्यात्मिक शरीर है, एक क्षण के अंदर कहीं से कहीं चले जाएंगे। आ गए वहां, दोनों में वार्तालाप हुई, रस्सी फंदे बंधा हुआ है, आधा खींच लिया है आधे अजामिल, मरते हुए मर गया है। एक्चुअली मर गया मतलब सूक्ष्म शरीर जो है उसको स्थूल शरीर से अलग करके ऊपर आ गया है, ऑलरेडी घसीट के ले जा रहे थे उसको यमलोक के लिए, उसके पाप के लिए। और बातचीत हुआ उस समय और पूरा उसने सुना। यमदूत लोग तीन गुणों का जो वेद है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे, और विष्णुदूत है वो भगवत धर्म के ऊपर चर्चा कर रहे थे। और इनको भागवत धर्म नहीं मालूम, यमदूतों को भागवत धर्म नहीं मालूम, उसने तो तीन गुणों के वेदा पढ़े, तीन गुणों के जो वेद है उसको पढ़े थे। भगवान ने अर्जुन को कहा त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। अरे तीन गुणों से वेद जो है, तीन गुणों से तुमको रजो सत्वगुण, तमोगुण से रजो, रजोगुण से सत्वगुण उठाने के लिए बस। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, तीन गुणों से ऊपर उठो, निर्द्वंद्वो अच्छे बुरे, इसमें उसे उठे ऊपर उठो, क्योंकि बुरा या अच्छा सब बुराई बुराई सब भौतिक संसार में, क्योंकि अच्छा भी कर्म करेंगे तो भौतिक संसार में जन्म लेना पड़ेगा, जन्म लिए तो मृत्यु जरा व्याधि आने वाली। तो ये अच्छे बुरे से उठो और भागवत धर्म को अपनाओ, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो शुद्ध सत्व में, निर्योग क्षेम आत्मवान, योगक्षेम वहाम्यहम, उनकी वो सब योगक्षेम की चिंता छोड़ दो, वो करने वाले हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तु माम ये जना परिपास्यते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम। पूर्ण रूप से भगवत भागवत धर्म की चर्चा करो। भागवत में इसीलिए बताया गया है सवाई पुंसाम परो धर्म यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहताय आत्मा सुप्रसिद्ध। तो ये भागवत धर्म की चर्चा हुई, पहली बार अजामिल को मालूम हुआ कि ये भागवत धर्म जो है सर्वश्रेष्ठ है। एक नारायण का नाम, भक्ति की शुरुआत होती है, भक्ति जो दिव्य है तीन गुणों से परे है, उसकी शुरुआत होती है श्रवणम कीर्तनम। एक नारायण के नाम से क्या मेरी परिस्थिति थी, कहां से कहां आ गया। और अब जैसे बातचीत हुई तो सब उसने सुना, और यमदूत ने फास को खोल दिया और बोले अभी यमराज के पास जाके अभी थोड़ा हमको पूछना है क्या है क्या है, ये सब उल्टा सीधा। पहली बार हमारा अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गया, डिसअपॉइंटमेंट हो गया, अभी जाके पूछना पड़ेगा कौन कौन सही में बॉस है बताओ। अभी तक तो हम समझते थे यमराज जिसको एक नोटिस दे दिया उसको नोटिस घर खाली करना ही पड़ेगा, पहली बार हमको ही खाली करना पड़ा, यहां से जगह खाली करना पड़ा, पास निकाल तो पूछना है जाके कौन है असली बॉस कौन है। तो ये सुन लिया यमरा अजामिल ने सब सुना था, तो तब वो उठा, फिर वापस उसका सूक्ष्म शरीर स्थूल में गया और वहां से उठा और कुछ बोलने गया, कुछ बोलने गया वो विष्णुदूतों को धन्यवाद देने गया। जैसे विष्णुदूतों ने देखा कि ये कुछ बोलने जा रहा है, तुरंत वहां से अंतर्धान हो गए। क्यों कोई बता सकता है क्यों क्यों अंतर्धान हो गए? अरे उसको बचाने के लिए आए थे, बचाए और यमदूत चले गए और ये बेचारा धन्यवाद देने के लिए जा रहा है, तुरंत अंतर्धान हो गए। आप भी सोच रहे होंगे क्यों ऐसा काम क्यों किए।
भक्तों को अपनी स्तुति अच्छी नहीं लगती,
प्रभु जी कहते हैं कि भक्तों को अपनी स्तुति अच्छी नहीं लगती है, बोले हमारा गुणगान क्या करेगा, चले गए वो। अरे उनको मौका देना था ना कम से कम, बोले हम नहीं भाई विष्णु है, पारदर्शक वस्तु जैसा होना चाहिए, बोले हम नहीं है विष्णु है, हमारे प्रभु है, हम तो आपके दास हैं। अभी उसको पता चला था कि भक्ति करना चाहिए, तो भक्ति करना उसको शिक्षा देना चाहिए ना, हमें बताना चाहिए था ऐसा करो, हरि नाम जपो, दिन में 16 माला करो, चालीसों का पालन करो, बोलने के बदले वहां से चले गए, गलत बात है। मटेरियल चीज कैसे बोलेंगे, अरे विष्णु दूतों को गुणगान करने गए तो अच्छे बात है ना, मद भक्ता पूजा व्यधिका, भक्तों का गुणगान करना, भगवान के गुणगान करने से भी भगवान को बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है। यस अरे बोल, थोड़ा खड़े हो जाइए एक मिनट। यस तो अमित प्रभु ने क्या आपके पास लैपटॉप है क्या, देखा आपने? ओके नहीं मजाक करो, तो वियोग में ज्यादा स्मरण बढ़ता है। आप बहुत कृतज्ञ है सबके प्रति, किसी के प्रति आपको बहुत मदद किया है और आप उसको अपना कृतज्ञता प्रकट करना चाहते हैं और वो चला गया, तो बार बार याद करेंगे, अरे ऐसा परिस्थिति में था मैं, एक भगवान जैसा एक व्यक्ति आके मुझे बचाया, कुछ भूलने या चला गया, क्या काम कहां है, मैं ढूंढ रहा हूं उसे, कहां है वो व्यक्ति जो मुझको बचाया, ऐसे परिस्थिति से बचाया मेरे को, सीधा नरक जा रहा था मैं, अरे घसीट के ले जा रहे थे मुझे, छुड़ाया और ये भी बताया कि मेरा उद्धार कैसे हो जाए। तो तीव्रता बढ़ाने के लिए वो लोग तुरंत अंतर्धान हो गए, क्योंकि वियोग में जो स्मरण होता है वो बड़ा तीव्र होता है, सामने रहेगा तो क्या है, अति परिचय अवज्ञा, तो ज्यादा ही परिचय मालूम है कौन है, तो बचा तो ठीक है, कौन क्या, मैं भी आपको बचाऊंगा एक कमी कभी, पर जब चले गए तो सोचते अरे क्या समय में बचाया, उनको कुछ बोलना नहीं, हमेशा एक बोझा जैसा रहता है, कब मिलेंगे कब मिलेंगे। तो फिर 12 साल के अंदर वो तैयार हो गए भगवत धाम जाने के लिए, और 12 साल के बाद वही चार विष्णु दूत फिर से आए, पहचान गए वो, अजामिल पहचान लिया, बोले वही थे ना, देखा था उनको, फिर से याद आ गया, और उस समय विमान लेके आए थे, देखिए सुंदर चित्र है भागवत के ऊपर छठे स्कंद, विष्णु दूत विमान लेके आए, जैसे तुकाराम को ले जाने के लिए आए थे ऐसे साक्षात उसी शरीर में, और उनको कहा कि गंगा में स्नान करो, जैसे स्नान किया अजामिल का एक चिन्मय शरीर प्राप्त हो गया और उसको बैठाए और ले गए वापस भगवत धाम। तो अब सवाल उठता है, जय ये भगवत धाम का दर्शन है आपका लिए, आपके लिए, तो ये 12 साल के अंदर क्या किया उन्होंने जिसके द्वारा 12 साल में ही वो भगवत धाम चले गए, और उनकी चेतना क्या थी, अगर ये जान जाएंगे तो हम भी इसी जीवन के अंत में भगवत धाम जा सकते हैं। सिंपल, हमें जानना चाहिए कि अजामिल की चेतना क्या थी और अजामिल ने किया क्या वो 12 साल, अगर ये जान जाएंगे और वही भावना हमारे अंदर हो जाए, क्योंकि हम अजामिल जैसे तो पतित नहीं है, इतने पापी तो नहीं है, सिर्फ मरते वक्त नाम ले रहे हैं, पहले से ले रहे हैं हम लोग, और पुत्र को बुलाते हुए हम लोग जप नहीं करते 16 माला, हम तो भगवान को देखते हुए जप माला करते हैं, तो फिर हमको होना ही चाहिए, पर भावना क्या थी अजामिल, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आज संक्षिप्त रूप से, अजामिल जब विष्णु दूत चले गए अंतर्धान हो गए, तो अजामिल क्या सोचता है, क्या भावना, पिछले 2 दिन में हम लोग चर्चा कर रहे हैं उपदेशामृत में, पहला श्लोक वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम रूपोस्थ वेगम, उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी दो चीज बताते हैं, पश्चाताप और तपस्या। यहां हम देखते हैं भागवत में कि अजामिल जैसे विष्णुदूत चले गए, अजामिल सोचने लगा, उसके पूरा जीवन का फ्लैशबैक उसने रिवाइंड किया अपना कैसेट, पूरा वीडियो कैसेट जैसा, और पूरा अपने जीवन का उसने दर्शन किया, एक रिवाइंड करके पूरा देखा मैंने क्या क्या किया, क्योंकि सुना था अभी क्या करना है क्या नहीं करना था। और कहता है, अहो मे परमं कष्टम अभूत विजित अविजितात्मनः येन विप्लावितं ब्रह्मा वृषल्यां जायतात्मना। अजामिल ने कहा, हाय अपनी इंद्रियों का दास बनकर मैं कितना अधम बन गया, मैं अपने सुयोग्य ब्राह्मण पद से नीचे गिर गया और मैंने एक वेश्या के गर्भ से बच्चे उत्पन्न किए। आदमी अजामिल शादीशुदा था, एक ब्राह्मणी स्त्री थी उसकी, एक ब्राह्मण के पद के पद से अधोगति चला गया। ध्यायतो विषयान् तुम संगस्ते उपजायते संगात संजायते काम कामात् क्रोधो क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रमतात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। स्टेप बाय स्टेप ऊपर से जैसे सीढ़ी से लुढ़क लुढ़क के गिरता है ना आदमी, सिस्टमैटिकली कैसा लुढ़कता है भगवान ने बता दिया दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में। फिर कहते हैं, हाय मुझे धिक्कार है, मैंने इतना पाप पूर्ण कांड किया है कि अपनी कुल परंपरा को लज्जित बनाया है। निस्संदेह मैंने शराब पीने वाली पतित वेश्या के साथ संभोग करने के लिए अपनी सती तथा सुंदर युवती पत्नी को त्याग दिया है, मुझे धिक्कार है। प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य बड़ा महत्वपूर्ण चीज लिखते हैं, यह उसकी मानसिकता है जो शुद्ध भक्त बन रहा हो। जो शुद्ध भक्त बन रहा है उसकी मानसिकता कैसी होनी चाहिए, माइंडसेट कैसी होनी चाहिए। जब भगवान तथा गुरु की कृपा से कोई भक्ति पद को प्राप्त होता है तो वह पहले अपने विगत पाप कर्मों पर पश्चाताप करता है, इससे उसे आध्यात्मिक जीवन के में आगे बढ़ने की सहायता मिलती है। विष्णु दूतों ने अजामिल को शुद्ध भक्त बनने का अवसर प्रदान किया था और शुद्ध भक्त का कर्तव्य है कि वह अवैध यौन नशा मांसाहार तथा जुआ खेलने जैसे अपने विगत पाप कर्मों के लिए पश्चाताप करे। उसे न केवल अपनी पुरानी गंदी आदतें त्याग देनी चाहिए अपितु अपने विगत पाप कर्मों के लिए पश्चाताप करना चाहिए। शुद्ध भक्ति की यही मापदंड है। तो पहला है कि सोचना कि मैं जो कार्य कर रहा था अगर उसी में कंटिन्यू करता तो मैं कहां जाता, मेरी गति क्या होती। कभी कभी कुछ भक्त लोग पूछते हैं, प्रभु जी कैसा सीरियस बनने का है, सीरियस डिवोटी बनना है, कैसा गंभीर भक्त बनना है, कैसा थोड़ा गंभीरता से लेना है भक्ति को। ये पहला लक्षण, विष्णु दूत हमारे जीवन में आए हैं किसी न किसी तरह से। विष्णु दूत यानी विष्णु के दूत यानी भक्त, किसी तरह से भगवान के भक्त हमारे जीवन में आए और हमको हमारे जीवन जो अधोगति काम क्रोध लोभ के तमोद्वार से हमको नरकीय ओर ले जा रहा था उसमें ब्रेक लगाया कम से कम और गाड़ी घुमाया तो बोला इधर चलो उधर नहीं, और अभी वो गाड़ी सही रास्ते पे चल रही है हमारी। तो अगर ना हम नहीं आते, अगर कोई वो ब्रेक नहीं लगाते और घुमाते नहीं हमारे गाड़ी को तो हमारी क्या परिस्थिति होती, क्या गति होती, क्या हमारी चेतना होती, क्या हमारे कार्यकलाप होते, क्या हमारे मानसिक स्थिति होती, इसके बारे में आप सोचिए। और इसके कारण क्या गति होती हमारी अगर वैसे ही गाड़ी चलता रहता तो पूरा जीवन भर। अब यह स्पष्ट है कि ऐसे कर्मों का फल स्वरूप मुझ जैसे पापी व्यक्ति को नारकीय अवस्था में फेंक दिया जाना चाहिए था, जो धार्मिक सिद्धांतों को तोड़ने वाले लोगों का निमित्त होती है। और मुझे वहां कष्ट सहना चाहिए था। क्या मैंने सपना देखा? क्या यह सच्चाई थी? मैंने भयावने पुरुषों के हाथ में रस्सी लिए मुझको बंदी बनाने के लिए आते और मुझे दूर घसीट कर ले जाते हुए देखा, वे कहां चले गए? और ये चार मुक्त तथा अति सुंदर पुरुष कहां चले गए जिन्होंने मुझे बंधन से मुक्त किया और मुझे नारकीय क्षेत्रों से घसीट कर ले जाने से बचाया? निश्चय ही मैं अति निंदनीय तथा अभागा हूं कि पाप कर्मों के समुद्र में मग्न हूं, किंतु फिर भी अपने अपूर्व आध्यात्मिक कर्मों के कारण मैं उन चार महापुरुषों के दर्शन कर सका जो मुझे बचाने आए थे। मैं उनके आने से अब अत्यधिक सुखी अनुभव करता हूं। ब्रह्मांड भ्रमिते को न भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्त लता बीज। इसी तरह से हमको भी यम पाश खींच लिए डाले थे। जिसको कृष्ण भावना मालूम नहीं है, भगवान कौन है, हम कौन है, हमारा संबंध क्या है, नहीं मालूम, इसका मतलब यम पाश लग गया है, सिर्फ खींचना बाकी है। बस हमारी भी वही अधोगति थी, पर अगर भक्तों के संपर्क में आने के बाद वो यम पाश को हटाकर अभी कंठी माला लगा दिया। हाँ, ये विष्णु दूतों का काम, ये बोले इसके पास आना मत भाई, ये हमारा आदमी है, ये हमारे प्रभु जी का आदमी है, इसके पास मत लाना, इसको ऑलरेडी हमने अप्लाई कर दिया, ये हमारे कंपनी का आदमी है, वो कंपनी में आपके कंपनी में उसको मत लगाओ काम। तो साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग, एक क्षण के संघ में अगर श्रद्धापूर्वक संघ करे तो ऐसा परिवर्तन हो जाता है। यदि मेरी विगत भक्ति न होती तो मुझ मलिन वेश्यागामी को जो मरने के लिए उद्यत है किस तरह वैकुंठपति के पवित्र नाम का उच्चारण करने का अवसर मिल पाता? निश्चय ही ऐसा संभव न था। और अब सुनिए और इसका तात्पर्य सुनिए। अजामिल कहता रहा, मैं ऐसा निर्लज्ज वंचक हूं जिसने अपनी ब्राह्मण संस्कृति की हत्या कर दी है। निस्संदेह मैं साक्षात पाप हूं। भला मैं भगवान नारायण के पवित्र नाम के सर्व मंगलकारी कीर्तन की बराबरी कैसे कर सकता हूं? और प्रभुपाद जी इसका बहुत सुंदर तात्पर्य लिखते हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के माध्यम से नारायण या कृष्ण के पवित्र नाम का प्रसार करने वालों को यह सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि इसमें आने के पूर्व, मतलब कृष्ण भावना में आने से पूर्व, हमारी स्थिति क्या थी और अब क्या है। हम मांसाहारी शराबी तथा स्त्री आकेटकों के गर्हित जीवन में जा गिरे थे जिनमें सभी प्रकार के पाप कर्म हमने किए, किंतु अब हमें हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने का सुअवसर प्रदान किया गया है। अतएव हमें इस सुअवसर की सदैव प्रशंसा करनी चाहिए। भगवत कृपा से हम अनेक शाखाएं खोल रखे हैं और हमें इस सौभाग्य का लाभ भगवान नाम के कीर्तन तथा भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करने में उठाना चाहिए। हमें अपनी वर्तमान तथा विगत स्थितियों के बीच जो अंतर है उसके प्रति सचेत रहना चाहिए और हमें अत्यंत सतर्क रहना चाहिए कि कहीं सर्वोच्च जीवन से नीचे फिर से न गिर जाना। मैं जब कुछ महीने पहले हमारे गुरुकुल के बच्चों ने एक सुंदर नाटक किया था, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही सुंदर नाटक है, भले आप लोगों ने कुछ इसका एक कहानी सुना होगा। ये कहानी ऐसा है कि एक बार एक गरीब आदमी भिखमंगा जैसा भिखारी सड़क पे बैठा भीख मांगता रहता है, तो एक बहुत पैसे वाला आदमी वहां से गुजरता रहता है और वो देखता है, कहता है अरे हाथ पैर सब ठीक है तो भी क्यों मांगता है? तो बोलता क्या करूं, कोई हमें कुछ काम हम नहीं दिया। तो बोले चलो मेरे घर चलो, मैं तुम्हें काम दूंगा। तो उसको उसके घर में नौकरी, मतलब झाड़ू पोछा करना, नौकरी दे देता है। तो आता है वो आदमी अपना फटा चप्पल फटा कपड़ा सब लेके अंदर आता है, तो उसको अच्छे कपड़े देता है और पैसा वैसा देता है, और वो आदमी उस घर की सफाई ऐसा करता है, ऐसा मतलब मानो आईने जैसा रखता है। तो सेठ बहुत खुश हो जाता है, बोलता है अरे कहा नौकर है, जितना मैं अपेक्षा उससे ज्यादा ही ये साफ सुथरा रख रहा है। तो प्रसन्न हो जाता है, तो उसको अपने कंपनी में ले जाता है और कंपनी में थोड़ा काम में लगा देता है, बोले यहाँ करो, तो वहां कोई छोटा मोटा काम करता रहता है, वो भी इतना अच्छा करता है कि वहां से उसको प्रमोशन देके वो असिस्टेंट बना देता है, और करते 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 बाद में सेठ जी का राइट हैंड बन जाता है। राइट हैंड मतलब सारे कंपनी का जो जितने भी लोग हैं वो उसके नीचे, ऐसा प्रामाणिक, ऐसा मतलब कठोर परिश्रम करने वाला और हमेशा पूरे जी जान लगा के सेवा करता है सेठ जी का। सब प्रसन्न, सेठ जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं उससे और उसको ज्यादा से ज्यादा क्या बोलते हैं जिम्मेदारी देते जाते हैं। पर इस संसार का नियम ऐसा है, कोई एकाएक ज्यादा प्रगति कर ले तो दूसरे लोग ईर्ष्या हो जाते हैं उनके प्रति, अरे अभी आया है, हाँ हमारे सामने आया, हमने इसको सिखाया कैसा पकड़ना चाहिए, इसको माला पकड़ना तो हमने सिखाया और आज ऐसे जा रहा, मेरी बिल्ली मुझ पे म्याओ। ईर्ष्या आने लगा तो सब लोग, सब वो काम का लोग एक साथ आए और बोले एक काम करेंगे, सेठ जी को कंप्लेंट करेंगे इसके बारे में, कुछ तो इसका गलती निकालना है, इसी तरह से गलती निकाल के इसको खींचना है नीचे। तो ढूंढने लगे बड़े ध्यान पूर्वक, क्या करता है, क्या करता है सुबह से शाम तक, क्या करता है, कुछ तो गलती मिले। कलयुग में गलती की कमी है क्या, कोई हम तो शुद्ध भक्त नहीं है, कोई ऊपर से नहीं उतर के आया, और ध्यान बिना ढूंढे ही मिल जाता है चार पांच, हाँ तो फिर ढूंढेगा तो क्यों नहीं मिलेगा। फिर मिल गई बहुत सारी, नहीं मिली इस बार, इसमें तो नहीं मिला उनको, बोला अरे ये तो सब कुछ टाइम टू टाइम आता है, टाइम पे आया क्या, हाँ एकदम टाइम, मतलब पांच मिनट जल्दी आता है, जल्दी क्यों आता है, कुछ तो होगा, अरे टाइम पे आना चाहिए, ये नहीं कि बेचारा टाइम से जल्दी आया, जल्दी क्यों आया, कुछ तो है। एक दिन वो छिप के देख रहे थे कि जल्दी आके क्या करता है, तो पांच मिनट जल्दी आया ये, और इसके टेबल जो है ऑफिस का टेबल, टेबल के पीछे छोटा सा कमरा उसने बनाया था, तो हर रोज आता था वो, उस कमरा को खोलता था, बड़ा ताला लगाया था उसने, ताला खोलता और वो कमरे के अंदर जाके दरवाजा बंद कर लेता, 6x6 छोटा कमरा था वो, और पांच मिनट उस कमरे में रहता, उसके बाद बाहर आता और फिर अपना ऑफिस काम शुरू कर। अब समझ में आया ये क्यों इतना पत्थर तरक्की कर रहा है, पूरा अकाउंट में से थोड़ा निकाल के डालता है अंदर जरूर, इसीलिए पांच मिनट अंदर जाके काउंटिंग करता है वो, कितना लिया आज का अकाउंट। तो फिर उसने क्या किया, उन्होंने जाके सेठ जी को बताया, बोले सेठ जी जिस पे आप इतने ज्यादा विश्वास कर रहे हो वो तो सबसे बड़ा वो मतलब धोखेबाज निकला। बोला आ कभी नहीं हो सकता, नहीं 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 अरे आपको दिखाते हैं चलो आओ। तो सेठ जी को ले गए और जिस दिन आता उसे पांच मिनट पहले ही पहुंच गया, पहले वो पांच मिनट पहले पहुंचता, ये 10 मिनट पहले पहुंचे छिप गए। तो वो आया वो आदमी, दरवाजा खोला और वो अंदर की कमरा खोला और अंदर गया और दरवाजा बंद किया, जैसे वो बाहर आया सेठ जी बाहर खड़े थे, सेठ जी को प्रणाम प्रणाम सेठ जी, हाँ प्रणाम प्रणाम, तो सब लोग पीछे लोग आ गए, बोला था ना हमने, देखो अंदर गया, देखो अभी खोल के देखो कमरे में क्या है। तो सेठ जी ने बोला ये कमरा खोलो, इस व्यक्ति ने बोला सेठ जी मैं आपके कुछ काम करने के लिए तैयार हूँ, कृपया ये काम मत बोलिए, मैं ये कमरा नहीं खोल सकता, प्लीज मुझे कमरा खोलने मत बोलिए। नहीं अब तो सेठ जी और भी बोले नहीं अभी खोलना ही पड़ेगा, अभी आत्रोता ज्यादा हो गया, क्यों नहीं बोल रहा है, बोले नहीं खोलना ही पड़ेगा आपको। तो सब लोग चार पांच बोला ना मैं देखो बोला प्लीज मैं आपके निवेदन करता हूं, अगर आप मेरी सेवा से प्रसन्न है तो मेरे को एक उसके बदले में मेरे को एक काम कीजिए, एक कमरा खोलने मत बोलिए मुझे, इसने कुछ नहीं है। बोले नहीं मुझे देखना है, कुछ नहीं तो दिखा। तो फिर बड़े हृदय कठिन कठोर में बोले ठीक है चलो आप बोलते हो तो मैं खोलता हूं। तो उसने खोला, कमरे के अंदर एक बड़ा बक्सा था, इतना बड़ा बक्सा। उसने बोला देखा ना सेठ जी हमने क्या बोला आपको, देखो कितना बड़ा बक्सा है, बोले बक्सा खोलो। तो सेठ जी कुछ नहीं है, फिर से मैं निवेदन कर, बोले खोलो। खोला उसने बक्सा खोला, ये पहले पहले ये चार पांच लोग अंदर घुस गए बक्से के अंदर, बोले कुछ तो मिलेगा, देखे कुछ नहीं, खाली है। और नीचे उन्होंने देखा एक फटा चप्पल और एक फटा दो सेट, एक मतलब पैंट और शर्ट, उसके अलावा कुछ नहीं था। तो उन्होंने निकाला, बोले ये क्या, शायद बदल दिया है आज, उसको मालूम था सेठ जी आने वाले, कुछ बदल दिया है। बोले सेठ जी ने मुझे ये क्या है, तो शर्मा के सर झुकाए खड़े था। तो फिर सेठ जी ने पूछा, नहीं मुझे बताओ है क्या है, इसको क्यों देखते हो, इसको देखने के लिए 5 मिनट हर रोज पहले क्यों आते। तो वो कहने लगा कि सेठ जी ये वही कपड़े हैं जिसे पहनकर मैं भीख मांगा करता था सड़क के छोर पे, और जिस स्थिति से आपने मुझे उठाया ऊपर और आज मैं जो भी हूं ये आप ही की कृपा से हूं। पर मैं भूल ना जाऊं कि मेरी आपसे मिलने से पहले मेरी परिस्थिति क्या थी, क्योंकि अगर वो भूल जाऊंगा तो वो कृतज्ञता मेरे हृदय में नहीं रहेगी, और इसीलिए मैं हर रोज इसे देखता हूं ताकि मुझे याद रहे मैं मेरा औकात क्या था, मैं कौन था और कैसे आपके मिलने से पहले मेरी क्या परिस्थिति है। तो इस तरह से प्रभुपाद जी यहां समझाते हैं, एक व्यक्ति को कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम प्रभुपाद जैसे महान भक्त विष्णुदूत हैं वो, और उनके जो जितने सारे छोटे मोटे दूत हैं उन्हीं के कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को मिलने से पहले हमारी परिस्थिति क्या थी, हमारा विचार कैसा था, हमारा आचार कैसा था, हमारी चेतना कैसी थी, हमारा लक्ष्य क्या था, हमारी गति क्या थी, अगर उसी उसी भावना से चलते तो, और फिर आज जो परिस्थिति में उसके बारे में सोचो। जब वो ये दोनों का अंतर देखेंगे तो कृतज्ञता होगी कि नहीं, ऐसा सुनहरा उपहार हमें मिला है, इसको खोना नहीं चाहिए, फिर से हम वो स्थिति में न चले जाएं। और वो जो रखता है तब आदमी प्रगति कर सकता है, जब वो भूल जाता है फिर से संभावना है कि वो फिर से गिर जाए, पर वो कभी वो जो नहीं भूलता तो वो निश्चित रूप से वही एक शक्ति है जो उसको उसके आने वाली जो तपस्या है उसमें देती है। और कृतज्ञता पूर्वक फिर अजामिल कहता है, हाँ फिर और एक बहुत अच्छी बात सुनिए, हाँ भक्तों यानी विष्णु दूतों के क्षण भर की संगति के कारण अजामिल ने अपने मन को संकल्प पूर्वक भौतिक देहात्म बोध के विलक कर दिया, इस तरह समस्त भौतिक आकर्षण से मुक्त हुआ और तुरंत हरिद्वार के लिए चल पड़ा। और फिर कहता है, हरिद्वार में अजामिल ने एक विष्णु मंदिर के में शरण ली, जहां उसे भक्ति योग संपन्न किया, उसने अपनी इंद्रियों को वश में किया और अपने मन को पूरी तरह भगवान की सेवा में लगा दिया। अजामिल पूरी तरह से भक्ति में लग गया, इस तरह उसने इंद्र तृप्ति से अपने मन को विलग कर दिया और भगवान के स्वरूप में चिंतन करने की पूरी तरह लीन हो गया। और हाँ, जब ब्राह्मण अजामिल की बुद्धि तथा मन भगवान के स्वरूप में स्थित हो गए तो उसने पुनः उस चार स्वर्गीय पुरुषों को अपने समक्ष देखा, वह समझ गया कि ये वही है जिन्हें उन्हें पहले देख चुका है, अतः उसने उनके समक्ष नतमस्तक होकर नमस्कार की। विष्णु दूतों का दर्शन करने के बाद अजामिल ने गंगा नदी के तट पर हरिद्वार में अपना भौतिक शरीर त्याग दिया, उसे अपने आदि आध्यात्मिक शरीर पुनः मिल गया जो भगवान के पार्षद के लिए उपयुक्त शरीर था। भगवान विष्णु के दूतों के साथ अजामिल सोने के बने हुए विमान पर सवार हुआ, वह आकाश के मार्ग से जाते हुए सीधे लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के धाम गया। एक बार मैं इसी श्लोकों पे प्रवचन दे रहा था तो हमारे एक भक्त हैं जो IIT के गौरांग प्रभु, उनका आईआईटी लोगों का दिमाग भी बहुत बड़ा चुस्त होता है एकदम, तो उन्होंने ये सब सुना और सुनने के बाद उनके आईआईटी दिमाग ने उसका फिल्टर किया पूरे, और उन्होंने एक सूत्र निकाला उनके मुंह से, जैसे भगवान ने सुना, ब्रह्मा जी ने सुना और उनके मुंह से वेद निकले, तो ये सारा प्रवचन सुनने के बाद उनके मुंह से एक सूत्र निकला, बोले रगड़। मैं बोला रगड़ क्या रगड़? बोले रगड़, क्योंकि मैं जब बोल रहा था तो नोट बना रहे थे, तो उन्होंने बोला रगड़। मैं बोला क्या रगड़ रहे हो भाई, बोलो तो सही, क्या है ये रगड़? बोला मैंने एक फॉर्मूला बनाया है, आध्यात्मिक जीवन में किसी को प्रगति करना है तो ये फॉर्मूला याद रखना है, रगड़, RAGAD। तो मैं बोला क्या भाई, कौन सा ब्रह्म सूत्र, वेदांत सूत्र का ये नया है रगड़? तो फिर उसने बोला, उन्होंने कहा कि बोला आर मतलब रिग्रेट, पश्चाताप। तो सबसे पहले अजामिल को पश्चाताप हुआ कि क्या स्थिति थी मेरी, कितना पाप किया। उसके बाद ए मीन्स अप्रिसिएशन, अरे आज किस स्थिति में हो, समझो आप, भगवान की कृपा नहीं होती, भक्तों की कृपा नहीं होती, हमें वो घसीट के वहां से ले जा रहे थे, वहां से उठा के वापस नहीं लाते, आज किस स्थिति में है। वैष्णव, वैष्णव मतलब बहुत ऊंची बात है, भले हम बने नहीं है, बनने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभुपाद को किसी ने पूछा वैष्णव, बोले नहीं वैष्णव बनने की कोशिश करो, वैष्णव बहुत ऊंची स्तर है और कम से कम उस मार्ग पे हैं हम, अप्रिशिएट द गुड फॉर्च्यून, अब समझो क्या सौभाग्य हमें मिला है। एंड थर्ड इज जी मतलब ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता होनी चाहिए, क्या हमारी स्थिति थी और वहां से क्या कृपा मिल गई हमें। और उसके बाद RAGA मतलब ऑस्टेरिटी, तपस्या। क्या तपस्या? फिर से वहां नहीं जाना और उसके लिए जो जरूरत है वो करते रहना और आगे प्रगति करना, और वो तपस्या ऑस्टेरिटी विद डिटर्मिनेशन, दृढ़ता पूर्वक, अब मैं फिर से वहां नहीं जाऊंगा, अब जो कुछ भी मुझे ये उपहार मिला है, सौभाग्य मिला है, इसको मैं खोऊंगा नहीं, इसको लापरवाही से गवाऊंगा नहीं, इसको बड़ी गंभीरता से लूंगा और इसका पूरा फायदा लेकर इसी जीवन में मैं भगवत धाम जाऊंगा। तो पश्चाताप होना, और आज हम परिस्थिति क्या है, हमारी परिस्थिति को समझना, ये सिर्फ वैष्णव की कृपा है, बिना भगवान की कृपा से, बिना वैष्णव की कृपा से हम उठ नहीं सकते ऊपर, ये हमारी योग्यता नहीं है, ये सिर्फ कृपा है। और फिर ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता होनी चाहिए, जिस व्यक्ति की कृपा से, अगर प्रभुपाद जी अकेले उतना तपस्या नहीं किए होते, राधा दामोदर में बैठकर भागवतम नहीं लिखे होते, अगर इतना कठिन तपस्या करते हुए पाश्चात्य देश नहीं गए होते, प्रचार नहीं किए होते, तो आज हमारा क्या होता। तो कृतज्ञतापूर्वक, और कृतज्ञतापूर्वक, कृतज्ञता सही में है तो तपस्या होनी चाहिए, जो दिए हैं उसको अच्छी तरह से करो और दृढ़तापूर्वक, और तब हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और तब अजामिल जिस प्रकार से गया, हमें 12 साल के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, ट्रेनिंग नहीं लेना पड़ेगा, अगर अभी से शुरू कर दे, क्यों मृत्यु में, क्या इनको देखकर ही सीखना है, क्या ये यमदूतों को देखने के बाद ही सीख, कम बुद्धि वाले लोग देखने के बाद समझ में आता है, सबसे कम बुद्धि वालों को अनुभव करने के बाद समझ में आता है, अजामिल जैसे, उससे कम बुद्धि वाले लोग देखने के बाद समझ में आता है, मरते मरते अगर सचमुच में दिख गए एक दो, हाँ, तब समझ में आता, अरे बाप रे, फिर से नहीं बाबा। उससे भी ज्यादा, थोड़ा ज्यादा बुद्धि वाले सुनकर समझ लेते हैं, बोले सुन लिया, देखने की कोई जरूरत नहीं, देखा पिक्चर देख लिया ना यमदूतों का, बस काफी है, देखो। ये सामने आएंगे तो आप समझ में आ जाएगा, सामने आने मत दीजिए फिर से। तो श्रुताभ्याम, सिर्फ श्रवण किया, अब कीर्तन शुरू कर दो, तब हमारा जीवन सफल हो जाएगा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, भीष्म पितामह की, गौर प्रेमानंद।